एक अद्भुत सी यात्रा। यह यात्रा एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरे पापा उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर थे। सरकारी नौकरी की वजह से तबादला एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। ऐसे ही एक बार तबादले के दौरान हम सभी को नई जगह पर जाना था। उस जगह के अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए पापा को जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचने को कहा गया। जिस जगह से हमको जाना था वहां रेलगाड़ी की सुविधा नहीं थी और हमारे पास उस समय कार नहीं थी। कहीं आसपास जाना होता था तो हम सभी मोटरसाइकिल से चले जाते थे, लेकिन जहां पर जाना था वह करीबन 3-4 घंटे की दूरी पर थी और बस सुबह ही चलती थी जो निकल चुकी थी। पापा ने ड्राइवर के कहने पर ट्रक से जाने का फैसला लिया। दोपहर के खाने के बाद ट्रक में सामान के साथ साथ मम्मी पापा और 2 छोटे भाइयों के साथ मेरी यात्रा शुरू हो गई। उस समय मैंने कक्षा 3 की परीक्षा दी थी। हमारे साथ हमारी देखरेख करने वाले हरिराम काका भी थे। ड्राइवर की सीट के साथ में 3-4 लोगों के बैठने की जगह होती है। वहां पर पापा, एक छोटा भाई, मम्मी और उनकी गोदी में सबसे छोटा भाई जो करीबन 2 साल का था, सभी बैठ गए। उस सीट के ऊपर छोटी सी लेटने के लिए जगह बनी हुई थी। मैं वहां पर लेट गई। ट्रक के ड्राइवर का साथी और हरिराम काका ऊपर चले गए। ट्रक में ड्राइविंग वाली जगह के ऊपर खुले में एक हिस्सा होता है और उसके पीछे सामान रखने के लिए जगह होती है। वहां पर दोनों चले गए। मेरे लिए वह यात्रा बहुत ही मजेदार थी। पहली बार इस तरह की यात्रा कर रही थी। कुछ ही देर चलने के बाद ट्रक में खराबी आ गई, जिस वजह से 1 घंटे का समय ठीक होने में लगा। और जब ट्रक चलने वाला हुआ तो मेरा बीच वाला भाई हरिराम काका के साथ ऊपर जाने की जिद करने लगा। पापा के मनाने पर भी न माना। उसका ऊपर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा मजे करेगा। फिर थोड़ी दूर जाकर किसी ढाबे पर ड्राइवर ने चाय पीने के लिए रोक दिया। पापा का नए शहर में रात होने से पहले पहुंचने का इरादा था, लेकिन इस तरह से दिन छिप गया और रात होने लगी। फिर ड्राइवर को कुछ ही देर में भूख लगाई और आगे जाकर किसी और ढाबे पर रोक दी। मेरे लिए तो यह एक बढ़िया मौके से कम नहीं थी, जिसका मुझे इंतजार था कि कब मैं खुली हवा में जाऊं और रात में चलते हुए ट्रक में आसमान के तारों को देखूं। पर मम्मी पापा को रात में ट्रक के साथ चलना कुछ भा नहीं रहा था। ड्राइवर ने उस जगह पर रोका जहां पर बहुत सारे करीबन 30-40 ट्रक खड़े थे। सभी ड्राइवरों ने एक साथ ढाबे पर खाना खाया। मम्मी ने चलने से पहले रात का खाना साथ में रख लिया था कि नई जगह पहुंचकर खा लेंगे, लेकिन देर होने की वजह से ट्रक में ही खाना पड़ा। जब ट्रक चलने को तैयार हुआ तो पापा ने ड्राइवर से कहा कि सुबह के 4 बजे निकलते हैं, क्योंकि उस रास्ते में काफी लूटपाट की वारदातें होती थी। ड्राइवर पापा की बात को समझ गया था, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। उसने कहा, साहब कानवाय के साथ जा रहे हैं और आप चिंता मत कीजिए, अगर कुछ होता है तो पहली गोली मेरे सीने में लगेगी। पापा को ना चाहते हुए भी चलना पड़ा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। पर मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि मैं खुले आसमान का नजारा ले सकूंगी। मेरी इस जिद के कारण ड्राइवर के साथी को दूसरे ट्रक में जाना पड़ा। ऊपर मैं, मेरा भाई और काका थे। मैं ट्रक के चलते ही आसमान के तारे और खुली हवा का आनंद लेने लग गई। कुछ ही देर बाद बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद ट्रक भी रुक गया। हमारा ट्रक 4th नंबर पर था। चारों तरफ सन्नाटा था और गोलियों की आवाज आ रही थी। ड्राइवर ने बताया कि डकैतों ने घेर लिया है। पापा और मम्मी ने अपने सोने के गहनों को रुमाल में बांध लिया और सोच रहे थे कि डकैतों के आने पर यह सभी गहने उनको सौंप देंगे। उनको विश्वास था कि हम सभी को कुछ नहीं होगा। इसी दौरान सभी ड्राइवर एक साथ इकट्ठे होकर सबसे पीछे वाले ट्रक से चुपचाप से वापस शहर की तरफ अपनी जान बचाकर भाग निकले। अब तो भगवान को याद करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैंने शंकर भगवान को याद किया और मन में ही कहा कि भगवान हमें बचा लो। गोलियां ऐसे लग रही थी मानो ऊपर से निकल रही है। कुछ देर बाद सभी डकैत लूटपाट में लग गए, दूसरे ट्रक को लूट ही रहे थे। तभी फिर से गोलियों की आवाज आने लगी क्योंकि पुलिस की जीप आ गई थी। पुलिस वालों को सूचना ड्राइवरों ने दे दी थी। उनके आने पर सभी डकैत एक जगह पर इकट्ठा हो गए। मैंने जब हल्का सा उठकर देखा तो मुझको उनकी तरफ से थोड़ी रोशनी दिखाई दी, जैसे कि उनके हाथ में टार्च थी और उनके पैर दिखाई दे रहे थे। आज भी वह दृश्य मेरे सामने आ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते। इतना देखकर मैं चुपचाप लेट गई और छोटा भाई धीरे से तोलती आवाज में बोला, दीदी ये क्या हो रहा है? मैंने उससे कहा कि जोर से मत बोलना, नहीं तो चोर हमें पकड़ कर ले जाएंगे। पता नहीं इतनी सी उम्र में यह सब समझ कहां से थी। हरिराम काका का कुछ याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने किस तरह से उस समय हम दोनों को संभाला। पुलिस और डकैतों दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। फिर से मैंने उठकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि डकैत किसी को खींच कर ले जा रहे हैं। उसके बाद गोलियों की आवाज आना बंद हो गई एवं किसी जीप की आवाज आई और धीरे धीरे जीप की आवाज आना बंद हो गई। फिर से चारों तरफ सन्नाटा था। पापा ट्रक से बाहर निकले और हमको नीचे उतार ही रहे थे, तभी एक जीप आकर रुकी। हम सभी स्तब्ध रह गए, अब तो नहीं बचने वाले। जब उनकी तरफ देखा तो वो पुलिस वाले थे। उन्होंने हमें बताया कि फायरिंग के दौरान डकैतों का एक साथी मारा गया, जिसकी वजह से लूटपाट बंद करके वे सभी वहां से कूच कर गए थे। यह सब सुनकर हम सभी बहुत खुश हुए और थोड़ी देर में ड्राइवर भी आ गया। लेकिन अब न तो मेरी और न मेरे भाई की हिम्मत पड़ रही थी ऊपर जाने की। सभी एक साथ नीचे बैठे रहे और कुछ ही देर में नए शहर में सुरक्षित पहुंच गए। परंतु मुझे आज तक यह समझ नहीं आता है कि हम बच्चे किस वजह से, क्या पापा मम्मी के विश्वास की वजह से, ड्राइवर की सूझबूझ से, या फिर मैंने भगवान को याद किया था, यह सब उसी का नतीजा था। उस दिन के बाद से मेरी ईश्वर में आस्था और बढ़ गई थी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कुछ गलत करते हो तो उसका परिणाम गलत होता है। जैसे डकैतों के साथ हुआ, उन्हें अपने एक साथी से हाथ धोना पड़ा। यह कहानी मैंने अपनी याददाश्त के आधार पर लिखी है। काफी हद तक घटना याद थी, कहीं कहीं पर श्रृंखलाओं को जोड़ने में कठिनाई हो रही थी, वहां पर पापा की मदद ली है।